ओम शांति। तो हम लोग पढ़ रहे थे बाप दादा का इशारा, बेहद की वैराग बुद्धि धारण करो। ये मुरली है 15 सितंबर 1971। यह स्मृति सदैव रहेगी, मैं निराकार से साकार में आकर यह कार्य कर रही हूँ। बीच बीच में हर कर्म करते हुए इस स्थिति का अभ्यास करते रहो तो निराकार हो साकार में आने से निरंकारी और निर्विकारी जरूर बन जाएंगे। यह अभ्यास अल्पकाल के लिए करते भी हो, लेकिन अब इसी को सदाकाल में ट्रांसफर करो तो सदैव यह स्मृति रहे कि मैं निराकार से साकार में आकर यह कार्य कर रही हूँ। तुमको नशा रहना चाहिए कि ये खिदमत किसने दी है। आज वरदान में बोला है बाबा ने, तुम सब कौन हो? खुदाई खिदमत का। तो सदैव यह स्मरण रहे कार्य किसने दिया हुआ है। सदैव यह स्मृति में रहे कि खुदा ने हमको खिदमत दी है, इसका तुमको नशा रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? सहजयोग, सहजयोगी बन जाएंगे। सहजयोग की विधि से सहजयोगी बन जाएंगे। तो यह अभ्यास अल्पकाल के लिए करते भी हो, लेकिन अब इसी को सदाकाल में ट्रांसफर कर दो। कौन सा अभ्यास? कि मैं निराकार साकार में आकर यह कार्य कर रही हूँ। मैं हूँ निराकार, परंतु साकार में आई हूँ। किस लिए आई हूँ? कार्य करने के लिए। और कार्य करते ही मुझे फिर वापस। तो यह अभ्यास सदाकाल में ट्रांसफर कर दो। इस अभ्यास को, यह भी एक है बहुत छोटा, परंतु यह भी अभ्यास है कि मैं निराकार आत्मा इस तन में आई हूँ सेवात, मैं निराकार आत्मा इस तन में आई हूँ खिदमत करने के लिए, मैं निराकार आत्मा साकार में आई हूँ। और कितना समय के लिए आई हूँ? थोड़े समय के लिए आई हूँ। यू वैरागी भी बने हो, वैराग्य वृत्ति है, लेकिन कितने लेकिन है बाबा के? किताब है पूरी एक लेकिन पर। स्पार्क वालों ने किताब बनाई है लेकिन पर, इतनी मोटी। हर चीज में लेकिन शब्द कहाँ कहाँ बाबा ने प्रयोग किया है। तो वैरागी तो हो, वैरागी तो बन गए, वैराग वृत्ति भी है, लेकिन क्या? बेहद का नहीं है, लेकिन सदा काल का नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा है, कभी है कभी नहीं है, सदा नहीं है, यथार्थ नहीं है, बेहद नहीं है, सदा नहीं है, यथार्थ नहीं है, कभी कभी का है, और सम टाइम वाला है, ऑलवेज वाला नहीं है। लेकिन सदाकाल के लिए और बेहद के वैरागी बनो, सदाकाल के लिए, हमेशा के लिए, निरंतर के लिए। निरंतर पावरफुल स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। संडे की मुरली, निरंतर पावरफुल स्थितियां, निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। तो सदाकाल के लिए और बेहद के वैरागी बनो, नहीं तो कोई हद की वस्तु वैराग वृत्ति से हटाने के लिए निमित्त बन जाती है। इतना कमजोर वैराग्य है कि हद की वस्तु निमित्त बन जाती है वैराग को नष्ट करने के लिए। कौन सी हद की वस्तु वैराग को खत्म कर देती है? साधन खत्म कर देते हैं, और वस्तुएं, वस्तु वस्तु मोहन, वस्तु 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 सारे साधन, सारी चीजें दैनिक उपयोग में लाने वाली, और वस्तु हाँ वो चाह, हमारे पास ये नहीं है, उसके पास वो है, हम क्या करें अब?
ये होता तो हम भी ऐसा कर लेते हैं, ये होता तो ऐसा भी कर लेते।
फिर भी नए नए मॉडल जो निकलते हैं।
वस्तु 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 अर्थात साधन, वस्तु अर्थात कोमल बहन आ जाओ, और
आज जो चीज है पुराना हो गया, नया चीज निकला है उसको देख कर भी।
अच्छा नया, हाँ नया, पुराना नहीं चाहिए, लोग क्या कहेंगे, वही मोबाइल, ये तो बहुत पुराना मॉडल है। आजकल तो दुनिया कहाँ है, तुम कहाँ हो, दुनिया कहाँ जा रही है और आप कहाँ, वही पड़े हो, वही पुराना। अभी जमाना कौन सा है, तो वस्तु उसमें मोबाइल या कोई भी वस्तु, गाड़ी वस्तु और मोबाइल गाड़ी और कौन सी वस्तु बेहद के वैराग को खत्म कर देती है देवेंद्र भाई, कौन सी वस्तु है हद की, कपड़े, जूता, हर एक जगह जाने के लिए अलग 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 अलग, वहां जा रहे तो वहां वॉकिंग के लिए जाने के लिए दूसरा जूता, मधुबन में ले जाने के लिए दूसरा जूता, हाँ नहीं उसकी बात नहीं चल रही है, जरूरत की बात चल रही है। कोई भी हद की वस्तु वैराग्य वृत्ति को हटाने के लिए निमित्त बन जाती है, कोई भी वस्तु हो सकती है, फिर वो कोई भी हो सकती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सूक्ष्म अति सूक्ष्म। वही पूरा हो गया, हम एक कहीं रिट्रीट सेंटर पे गए थे, रिट्रीट सेंटर पे भाई बहने आते रहते भट्टी करने के लिए, तो एक ग्रुप आया था 15 लोगों का, कई सारे लोग थे उसमें, तो अभी नई जगह थी, हम भट्टी करने तो आए हैं परंतु जगह भी तो देखनी होती है, तो पहले दिन कहीं देखने गए, फिर दूसरे दिन कहीं गए, तीसरे दिन भी कहीं चले गए, अभी 14 दिन तो जाने का था, तो अभी भट्टी तो हुई नहीं, तो चलो बोले अभी बाबा के कमरे में 1 घंटा तो बैठ के आना ही है, आए थे किस लिए, भट्टी करने खास, परंतु समय इधर उधर चला गया, देखने में, साइट सीइंग में, तो 1 घंटा फिर भट्टी करके स्वयं को संतुष्ट करके वहां से गए। तो कोई भी हद की वस्तु वैराग्य वृत्ति से हटाने के लिए निमित्त बन जाती है, वो कौन कौन सी वस्तुएं है उसकी चेकिंग, कि ये वस्तु आते ही हमारा वैराग कम हो जाता है, ये वस्तु ही जैसे एंट्री होती है वैराग थोड़ा डाउन हो जाता है, सदा ही धधकता हुआ वैराग रहे, ये मार्ग कौन सा है, धधकती हुई अग्नि पर चलने का मार्ग है, ब्रैकेट में सहज राजयोग। सीला एंड साइबिस, इंग्लिश में कहावत है, बिटवीन सीला एंड साइबिस स्टैंडिंग ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, न इधर न उधर कहाँ। तो कोई भी हद की वस्तु कुछ भी हो सकती है, फिर वो चश्मा भी हो सकता है, यही पुराना चश्मा, अभी कितने अच्छे अच्छे आ गए हैं, वही लगा के बैठे हो अभी तक, दांत अच्छा वाला लगाओ, जरा सोने वाला लगाओ तो अच्छा लगेगा, स्टेटस मेंटेन रहता है उससे, तो स्माइल करते ही चमकता है अंदर से, कितना अच्छा लगता है। शूज अलग अलग, नक्की पे वॉकिंग के लिए दूसरा, इधर आने के लिए दूसरा, अलग अलग चाहिए, स्वेटर, जैकेट, गाड़ी, पानी,
फर्नीचर,
हाँ फर्नीचर भी अच्छा चाहिए, वो कहा सुनाया था ना, एक कौन सी कहानी थी, वो विदेशी भारत में आता है भ्रमण करने के लिए, तो क्या कहानी है वो, ऐसे ही कुछ है ना, हाँ तो वो उसको पूछता है कि भाई तुम्हारा सामान कहाँ है, तो बोलता है कि मैं तो ये हूँ विजिटर हूँ, सामान कुछ है नहीं मेरा, तो उसको गेस्ट हूँ, तो उसको अपने घर ले जाता है सन्यासी, सन्यासी उसके घर में, वो विजिटर उसके फॉरेनर उसके घर में जाता है सन्यासी के घर में, तो देखता है वहाँ सामान ही नहीं है कुछ भी, कोई फर्नीचर ही नहीं है, तो वो विजिटर उसको पूछता है फॉरेनर तुम्हारा फर्नीचर कहाँ है, तो बोलते फर्नीचर कहाँ का, मैं भी विजिटर हूँ इस धरती पर, तुम भारत में विजिटर हो तो तुम्हारा सामान नहीं हो, मैं इस धरती पर विजिटर हूँ आगंतुक, तो मेरा कहाँ से सामान आ गया कोई, तो वस्तुएं और कौन सी वस्तु है? हाँ, पार्सल, पर्स, पर्स। हाँ, माताओं की पर्स तो इतनी बड़ी रहती है कि उसमें कोई दूसरा बैठ जाए, अंदर पर्स लेकर ही घुसती है। पर्स यहाँ बैठेंगे और पर्स बाजू में, बाकी उधर दब दब के बैठे, पर पर्स को अलग से जगह है। हाँ, संभालना तो है, पर वहाँ कोई बैठ भी सकता है। हाँ, पर्स लेकर ना। अरे इधर भी आ जाओ ध्रुव, इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ कोमल, कमल भाई, इधर 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 आ जाओ। तो पर्स तो बहुत बड़ी माया है, कोई कोई तो बहुत बड़ी रहती है, कोई कोई की छोटी रहती है, कोई कोई यहाँ भी रख देते हैं वो अच्छा है, कोई बाजू रखते हैं। और मोबाइल, मोबाइल भी बचता है जबरदस्त। हाँ, रिंगटोन भी बचता है, तो मुश्किल है माताओं का। पहले तो दो तीन चेन खुलती है, किसमें मोबाइल है, कौन से इसमें, वो ही पता नहीं चलता है। पहली चेन खुली, फिर उसमें नहीं है, फिर दूसरी, पहले तो यही नहीं पता चलता है कि उसका बज रहा है, दूसरे बताते हैं कि माता जी मोबाइल बज रहा है, तो फिर चेन खोलना चालू होती है। फिर वो चेन खुली, फिर उसमें से निकाला, फिर निकाला कि देखा तब तक बजना चालू ही है। हाँ, तो बजना चालू है, फिर उठा के बाहर जा रहे हैं, गेट के बाहर, तब तक भी बजना चालू है, फिर वहां से जब चालू किया, फिर जोर जोर से बातें करना भी चालू है, और वो सब करके फिर 10 मिनट में फिर से योग में, फिर थोड़े देर में और चालू हो जाता है। तो वस्तुएं, और कौन सी वस्तुएं है? सेंट, सेंट भी लगाते हैं, अच्छा पावरफुल सेंट लगा के आते हैं, सूक्ष्म वतन से आधे से ज्यादा नीचे आ जाते हैं बाकी बैठे हुए। कौन सा बेड,
बिस्तर,
चारपाई ना, हाँ, फर्नीचर में आ गया वो, बैच, बेड, हाँ, सब अच्छे से अच्छा चाहिए। तो ये सारी वस्तुएं क्या करती है, कोई भी नहीं तो कोई भी हद की वस्तु वैराग्य वृत्ति से हटाने के लिए निमित्त बन जाती है। अभी आगे नेक्स्ट मुरली, 19 जुलाई 72, जो फ्यूचर में महाविनाश होने वाला है और नई दुनिया आने वाली है, वह भी आपके फीचर से दिखाई दे। महाविनाश कहाँ से दिखाई दे? फीचर से। कैसे विनाश दिखाई दे हमसे? नहीं, त्याग तपस्या नहीं, विनाश, महाविनाश, महाप्रलय।
बांग्लादेश में लड़ाई चल रहा था ना 71 में,
72 की है। हाँ,
ये 72।
देखेंगे तो फिर वैराग्य ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक तरफ वैराग्य, दूसरी तरफ अपना भविष्य बनाने का उमंग आवेगा। जैसे कहते हो एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति, तो विनाश मुक्ति का गेट और स्थापना जीवन मुक्ति का गेट, तो दोनों आंखों में यह दिखाई दे। यह पुरानी दुनिया जाने वाली है, आपके नयन और मस्तक यह बोले। क्या बोले हमारे नयन और मस्तक? नयन और मस्तक बोलने की बात चल रही है, मुख नहीं, नयन बोलेंगे, देखेंगे नहीं, मस्तक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यह बोले, मस्तक भी बोलता है, कविता है, मस्तक भी बोलता है। बाबा ने कहा एक दिन तुम्हारा मस्तक ही क्या बन जाएगा? टीवी बन जाएगा। एक दिन तुम्हारा मस्तक ही क्या बन जाएगा, जिसमें लोग अपनी स्थिति को देखेंगे, उनको अपना ही साक्षात्कार होगा। तो मस्तक भी बोलता है। कोई भी भाग्य मस्तक, कोई का भाग्य मस्तक दिखाता है, समझते हैं ये बड़ा चमत्कारी है। तो ऐसी जब सर्विस करे तब जय जयकार हो। तो अब विश्व के आगे एक सैंपल बनना है। तो क्या सुना? जो फ्यूचर में महाविनाश होने वाला है और नई दुनिया आने वाली है, वह भी आपके फीचर से दिखाई दे। हम जो बोले वो सत्य हो जाए, बोलना भी सत्य हो जाए, जो दिखे हमसे वो भी सत्य स्वरूप दिखे उनको। संडे की मुरली में अनुभव क्या हो उनको, देखने से ही, नैनों से, वृत्ति से, दृष्टि से, वाइब्रेशन से कि ये न्यारी आत्माएं हैं। हाँ, उनको गपोड़ा ना लगे, ये सत्य लगे। किसी गांव में एक बहुत बूढ़ा एक ज्योतिष रहता था, तो वो जो भी लोग बहुत परेशान थे क्योंकि वो जो भी कहता था सत्य हो जाता था, बहुत ही परेशान थे उससे। एक बार कई लोगों ने सोचा इसकी थोड़ी परीक्षा ली जाए, अब शायद इसको देखते अहंकार है क्या, कि ये जो भी बोलता है सत्य हो जाता है। एक बहुत बड़ा कोट पहनता है एक आदमी, अंदर एक कबूतर छुपा के ले जाता है और उसको प्रश्न पूछते हैं कि ये कोट है, इसके अंदर एक कबूतर है, अब ये बताओ ये जिंदा है या मरा है। और सोच के जाते, अगर इसने कहा जिंदा है तो निकालते समय गर्दन दबा देंगे तो मर गया, अगर उसने कहा कि मरा है तो वैसे निकाल देंगे, अब बोलो। तो बहुत ही अद्भुत उत्तर दिया, क्या कहा होगा उसने। नहीं, उसको कहा बताओ कि ये कबूतर जिंदा है या मरा है, अंदर है, आप जैसे बोलोगे निकाल के दिखाएंगे, अब बताओ। हाँ, इट इज ऑल इन योर हैंड, इंग्लिश कहानी है, इट इज ऑल इन योर हैंड, ये जिंदा है या मरा है ये तुम्हारे हाथ में है। तो जो हम कहेंगे वो सत्य होगा, क्योंकि हम वही कह रहे हैं जो उसने हमसे कहा है। फिर आगे ये मुरली है 19th September 72। एक तरफ मधुरता, दूसरे तरफ इतना ही फिर बेहद की वैराग वृत्ति। वैराग वृत्ति से सिर्फ गंभीरता मूर्त रहेंगे, नहीं। वैराग अर्थात क्या, गंभीरता, सीरियस योगी। वैराग का अर्थ क्या है, गंभीरता, बिल्कुल, जो बिल्कुल हंसे ही ना। रमणीकता, फिर वो तो रमणीकता हो गई, संसारिकता आ गई। फिर तो राजी कितनों को किया, नाराज को राजी किया या राजी को राजी किया। वास्तविक गंभीरता, कितना पावरफुल महावाक्य है, वास्तविक गंभीरता रमणीकता में समाई हुई है, विरोधाभास, परंतु सत्य है। अब तक के जो धर्म है, अब तक के जो सन्यासी है, वो सब मरे हुए सन्यासी है। अब तक के जो धर्म है, वो सब थके हुए धर्म है, लड़खड़ाते हुए धर्म है, जान निकल गई है, थक चुके हैं सारे धर्म और सारे सन्यासी। बाबा ने जिस धर्म की स्थापना की है संगम युग पर, वो हंसता हुआ धर्म है, खिलखिलाता हुआ धर्म है, लाइव, उसमें जान है उस धर्म में, वो मरा हुआ धर्म नहीं है। नहीं तो कोई भी सन्यासी देखो कितनी उदासी रहती है उसके चेहरे पर, क्योंकि हंसने का निषेध है वहां पर। अंदर में क्रोध तो पूछो मत, और अहंकार की तो पराकाष्ठा है, उसको अगर गलती से भी यहां वहां सीट दे दो तो गुस्सा हो जाएगा बहुत। और ये धर्म कैसा है हमारा, जिसमें रमणीकता समाई हुई है, आधुनिक धर्म बाबा ने स्थापन किया है। थका हुआ नहीं है, रोता हुआ नहीं है, लड़खड़ाता हुआ नहीं है, नाचता गाता धर्म है ये, जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वह तो अज्ञानी लोगों का गंभीर रूप होगा, तो बिल्कुल ही गंभीर, रमणीकता का नाम निशान नहीं होगा। इतना गंभीर धर्म है, बुद्ध को कभी किसी ने हंसते हुए नहीं देखा, गंभीर धर्म है। लेकिन यथार्थ गंभीरता का गुण रमणीकता के गुण संपन्न है। जैसे लोगों को भी समझाते हो कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, लेकिन सिर्फ शांत स्वरूप नहीं है, लेकिन उस शांत स्वरूप में क्या क्या समाया हुआ है, आनंद, प्रेम, ज्ञान, सभी समाया हुआ है। तो जैसे लोगों को भी समझाते हो कि हम शांत स्वरूप है, लेकिन सिर्फ शांत स्वरूप नहीं है, लेकिन उस शांत स्वरूप में आनंद, प्रेम, ज्ञान सभी समाया हुआ है। वो ले लेना। अच्छा, तो ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले और साथ साथ मधुरता भी, यही विशेषता मधुबन निवासियों की है, अति मधुरता और अति वैराग। तो जो बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहने वाले हैं, वह कब घबराते हैं क्या? डगमग हो सकते हैं, हिल सकते हैं? यादगार क्या है तुम्हारा, कि चंचल घर कि हलचल घर? अचल, जो कभी हिलता नहीं, जो अचल है। कितना भी जोर से हिलावे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप होते हैं। तो नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप हो कि थोड़ा बहुत देखकर कुछ अंश मात्र भी स्नेह कहो व मोह कहो, लेकिन स्नेह का स्वरूप क्या होता है इसको तो जानते हो ना। जिसके प्रति स्नेह होता है तो उसके प्रति सहयोगी बन जाना होता है। बाकी कोई रीति रस्म से स्नेह का रूप प्रकट करना, इसको स्नेह कहेंगे व मोह कहेंगे? कोई भी रीति रस्म से स्नेह का रूप प्रकट करना, इसको स्नेह कहेंगे या मोह कहेंगे? तो कल हम बात कर रहे थे एक किताब की, जिसका नाम था भरतरी वैराग्य शतकम। संसार भर में वैराग्य के ऊपर जितनी किताबें लिखी गई है उसमें सर्वोपरि, सबसे श्रेष्ठ, इस किताब को पढ़कर हजारों लाखों लोग संन्यास ले लिया। ज्ञान की नहीं, बाहर की किताब है, भरतरी ने लिखी। बाबा याद करते हैं भरतरी को, साकार मुरलियों में आता है भरतरी, राजा गोपीचंद, ये सब जो पात्र है। तो ये इसका हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है ना आशीष भाई? आशीष भाई बहुत दिन से कह रहे थे थोड़ा वैराग तो आना चाहिए। बाबा ने कहा वैराग के वृत्ति का वायुमंडल बनाओ, तपस्या का वायुमंडल, पावरफुल तपस्या, पावरफुल वैराग। पर ये एक्सट्रीम लेवल पर वैराग है, बहुत अतिवादी जिसको कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट, उस तरह का है। इसके लिए तो कहा ना, जिन जिन ने ये किताब पढ़ी सीधा घर से बाहर। वो रुक नहीं सकते संसार में किताब पढ़ने के बाद। ऐसी ऐसी बातें उसने लिखी, हम अपने काम का पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, बाकी तो बहुत है। शतकम अर्थात 100 बातें, 100 श्लोक, वैराग्य शतकम। यही जो व्यक्ति था सन्यासी बनने से पहले एक भोगी राजा था, जब वो भोगी राजा था तब उसने और दो किताबें लिखी थी, एक तो नीति शतकम और सौंदर्य शतकम, भोग विलास की किताबें है। भोग विलास की जितनी किताबें होंगी संसार में उसमें वो किताबें सर्वश्रेष्ठ है, उससे ऊपर और कोई किताबें नहीं है, इतना उसमें भोग समाया हुआ है। पर यही व्यक्ति जब सन्यासी बना और वैरागी बना तो ये किताब लिखी, जो कि हट्ट योगियों के लिए उनका सबसे बड़ा शास्त्र है। जब भी संसार के प्रति मोह उत्पन्न होता है तो लोग इसको खोलकर उसका एक श्लोक पढ़ते तो तुरंत वैराग्य पूरा स्थापित हो जाता है। दो प्रकार के वैराग्य होते हैं, एक है तीव्र वैराग्य, एक है मंद वैराग्य। तीव्र वैराग्य कहता है ठीक है आज नहीं कल छोड़ देंगे, ये चीज छोड़नी है ना तो जल्दी क्या है, टाइम है। हाँ ये मंद वैराग्य है सर, ये मंद वैराग्य है कि आज नहीं देखेंगे कल। तीव्र अर्थात अभी के अभी तुरंत, ताबड़तोब, विदाउट एनी फर्दर डिले, अविलंब। जैसे कोई एक स्त्री होती है वो अपने पति को कहती है कि मेरा भाई कई समय से, कई साल हो गए संन्यास लेने का प्रयत्न कर रहा है, उसकी तैयारी अभी तक पूर्ण हो ही नहीं है, रोज सोचता है कि आज संन्यास ले लूं, फिर सोचता है आज ले लूं, पर वो फिर सोचता है कि अभी मैं तैयार नहीं हूं, तो क्या क्या करूं मैं उसको? तो वो पति कहता है मैं बताता हूं क्या करना चाहिए, फटाफट कपड़े बदलता है, गेरु वस्त्र धारण करता है और कहते मैं चला अब, बस फिर वापस कभी लौट कर नहीं आता है। ये है वैराग, वैराग्य अर्थात झटकता हुआ वैराग चाहिए, ये छोटे मोटे वैराग से काम नहीं चलता है। बाबा ने कहा वैराग्य वृत्ति से, तुम्हारी वैराग्य वृत्ति से दूसरों की, दूसरों को इच्छाओं से बचाओ। आत्माएं परेशान की हुए, आत्माएं दुखी की हुए, अशांत की हुए, हद की इच्छाओं से, हद की इच्छाओं से बचाने का मार्ग कौन सा बताया संडे? वैराग्य वृत्ति के द्वारा। पहले तो इनका जीवन की कहानी, इनका जीवन के बाबा ने भी सुनाई है कभी शायद मुरलियों में। उसका अपनी पत्नी में बहुत मोह होता है, कोई उसको फल देता है, एक राजा कहता है अपनी पत्नी को दे दो, अपनी पत्नी को देता हूँ। पत्नी का प्यार होता है महामंत्री से, वो महामंत्री को दे देती, महामंत्री का प्यार होता है किसी दासी से, वो दासी का प्यार होता है वो उसको दे देती है फल, दासी का प्यार होता है किसी सिपाही से और वो सिपाही किसी दूसरे एक नगरजन को दे देता है, वो नगरजन फिर से आकर राजा को देता है, उसको आश्चर्य होता है ये फल तो मैंने अपने पत्नी को दिया था, ये इसके पास कैसे हो गया, और मेरा तो कितना प्यार है। उसका ये दावा रहता है कि मुझे मेरी पत्नी जितनी प्यार करती है और संसार में वो उससे बढ़कर कोई प्यार ही नहीं है, पर उसका प्यार दूसरे से, उसका प्यार तीसरे से, ये देखता है और बहुत हो गया, संसार छोड़कर भाग जाता है, अब नहीं आना है इस संसार। हाँ इसमें तो बहुत सारी चीजें हम कहीं पर भी मिलती है। इंटरनेट पे मिल जाएगी आपको। ये बीच का श्लोक से चालू करेंगे हम, वो लिखता है ये चौथे नंबर का श्लोक है भरतरी वैराग्य शतकम। धन मिलने की उम्मीद से मैंने जमीन में, जमीन के पेंदे तक खोद डाले, अनेक प्रकार की पर्वतीय धातुएं फूंक डाली, मोतियों के लिए समुद्रों की भी थाह ले ली, राजाओं को राजी रखने के लिए भी कोई बात ना उठा रखी, मंत्र सिद्धि के लिए रात रात भर शमशान में एकाग्र बैठा हुआ जप करता रहा, पर अफसोस की बात है कि इतनी आफतें उठाने पर भी एक फूटी कौड़ी तक ना मिली। इसलिए हे तृष्णे, हे इच्छा, तू अब तो तू मेरा पीछा छोड़। क्या क्या किया उसने? यह जान सुनकर कि जमीन में धन है, मैंने जमीन को पेंदे तक खोद डाला पर कुछ भी हाथ ना आया, रसायन सिद्ध करने या सोने चांदी बनाने के लिए मैंने अनेक तरह की धातुएं फूंक डाली पर रसायन ना बना, फिर मैंने यह जानकर कि समुद्र रत्नों की खान है, उसमें मोतियों की इफरात है, मैं समुद्र में भी घुसा और उसकी थाह ले ली मगर कुछ हाथ ना आया, फिर यह सोचकर कि राजाओं की सेवा करने से धन हाथ आता है, मैंने उनकी उनको संतुष्ट करने की भी भरपूर चेष्टाएं की पर सब तरह उन्हें सब तरह से खुश किया पर फिर भी धन ना आया, शेष मैंने मंत्र सिद्धि करनी चाहिए, इतना सब कुछ किया पर कुछ भी हाथ नहीं आया, फिर लास्ट में सोचा थोड़ी मंत्र सिद्धि करो, उसके लिए मैं रात रात भर अकेला मरघट में मुर्दों के पास बैठकर मंत्र जापता रहा कि वशीकरण मंत्र सिद्ध हो जाए और राजाओं को वश करके धन प्राप्त करूं, पर यहां भी मुझे निराशा का ही सामना करना पड़ा, सारी चेष्टाएं करने पर भी एक फूटी कौड़ी तक ना मिली, इसलिए हे तृष्णे, हे इच्छा, इच्छा से बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? अब मैं निराश हो गया हूं, मुझे सर्वत्र अंधकार ही अंधकार दिखता है, अब तो तू दया करके मेरा पीछा छोड़ दे। इच्छा से बात कर रहा है,
अभी बाबा से बात,
इच्छा से क्या बात कर रहा है कि कितना मुझे तुमने भटकाया है, ये योगियों के लिए भी है, ज्ञानियों के लिए भी है और ब्राह्मणों के लिए भी है, यहाँ आ गए ब्राह्मण बन गए, सब कुछ पा लिया परंतु इच्छाएं कम कहां हुई है? इच्छाएं तो बढ़ती जा रही है, ये चाहिए और वो चाहिए, ये साधन चाहिए और वो साधन चाहिए। अच्छा वो साधन मिला, वो भी उसपे भी कुछ नहीं, सबको पता चलना चाहिए ये साधन हमारे पास है, उसकी एक दूसरी सेपरेट पार्टी। इच्छाएं भटकाती है। लिख रहा है ये कि मैंने इतना कुछ किया और आखिर में इच्छा से बात कर रहा है कि हे इच्छा, हे तृष्णे, अब तो तू मेरा पीछा छोड़, चाहे यहां चाहे संसार में चाहे गृहस्थ में। व्यक्ति सोचता है कि सुखी हो जाऊं, शादी करता है, सोचता है बच्चे हो जाए, बच्चे हो जाता है, हो जाते हैं, फिर भी सुखी होता है क्या? कभी सुखी नहीं हो पाता है। एक के बाद एक इच्छा मल्टीप्लाई होती जाती है, एक के बाद एक इच्छा बढ़ती जाती है। ये मिला अब वो चाहिए, ये मिला अब वो चाहिए। इच्छाएं कभी कम होने का नाम ही नहीं लेती है। इसके लिए ये क्या कह रहा है? इच्छाओं से बात कर रहा है कि अब तो तू दया करके कम से कम मेरा पीछा छोड़। इसका यही मतलब है कि भाग्य के विरुद्ध चेष्टा करना वृथा है। जितना धन भाग्य में लिखा है उतना ही बिना कोशिश किए मिल जाएगा, भाग्य के लेख से अधिक हजारों चेष्टाएं करने पर भी न मिलेगा। सिकंदर अमृत के लिए अंधेरी दुनिया में गया, पर अमृत के कुंड के पास पहुंच जाने पर भी वह अमृत को चख ना सका, क्योंकि उसके भाग्य में अमृत न था। मूर्ख मनुष्य भाग्य पर संतोष नहीं करता, धन के लिए मारा मारा फिरता है, जब कुछ भी हाथ नहीं लगता तब रोता और कलपता है। सुख की चाह है, वास्तविक सुख है कहा? खोज ये है। सबसे पहला तो जानना ये सबसे महत्वपूर्ण है कि सुख है कहा, सुख का उगम स्थान क्या है। अभी जहां हम सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो भोजन में, क्या वास्तव में उसमें भोजन में सुख है? अगर वो जिलेबी सही में इतनी स्वादिष्ट है तो अस्पताल में पड़ा हुआ वो मरीज जिसको पी लिया है उसे तो खाने की भी इच्छा नहीं हो रही है। अगर ये सर्वविदित सत्य है कि वो बहुत ही स्वादिष्ट वस्तु है तो सबको स्वादिष्ट लगनी चाहिए, सबको ही अच्छी लगनी चाहिए, पर उसको तो नहीं लग रही है, फिर स्वादिष्ट है या नहीं? हमको तो बहुत स्वादिष्ट लगती है, सबको लगनी चाहिए, पर मरीजों को तो नहीं लगती, उनको तो देखते ही वो उल्टी। तो जो भी नई नई जो इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है हृदय में, सोचता है आज ये करूं तो ये मिलेगा, ये करूं तो जो ये मिलेगा, जबकि बाबा ने हमारे संपूर्णता की परिभाषा क्या दी है? नष्टो इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छाओं से अविद्या हो जाए। जो इच्छाएं हो वो कौन सी इच्छाएं हो? बाप को प्रत्यक्ष करने की, बाप समान बनने की, ये उमंग हो, ये फूरना हो, बाकी वो सारी इच्छाएं जो हमें वैराग्य वृत्ति से नीचे गिराती है, वो सारी इच्छाएं जो हमारी स्थिति को नीचे गिराती है, वो सारी इच्छाएं जो हमें मार्ग से भटकाती है, वो सारी इच्छाएं से हमें मुक्त होना है। इसके लिए अगर दमन भी करना पड़े थोड़ा बहुत तो करना, कर लो, क्योंकि वो संतुष्ट तो होती नहीं, कितना भी उसको संतुष्ट करने की कोशिश करो। उनके प्रति रहम दिल नहीं बनो कि एक इच्छा आ गई। एक सन्यासी जंगल में बैठ के तपस्या करता था, अचानक एक दिन इच्छा हुई कि थोड़ी जिलेबी खा लूं। अब क्या करे? अब सन्यासी तो है परंतु इच्छा तो प्रकट हो गई, अब क्या करे? उससे लड़ाई तो इच्छा एक तरफ, दूसरे तरफ उसके सिद्धांत, मर्यादाएं, नियम, इच्छा बीच बीच में फिर आ रही है। तो क्या करूं अब? तो फिर उसने सोचा अभी कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर गया मार्केट में, जिलेबी खरीदी, फिर लेके आया, फिर सारी जिलेबी जो लिया उसको सब मिट्टी में मिला दिया और फिर अपने मन को कहा, हे मन तुझे जिलेबी चाहिए ना, खा, ये है। खा अब। इच्छाओं के स्वभाव को समझना, इच्छाओं पर डायरेक्ट आक्रमण करोगे तो वो प्रलयंकारी रूप धारण करेगी, गिरा देगी आपको। माया हर बात में बुलाती है, कल की मुरली चंबे में फंसाती है, पंख तोड़ डालती है। तो माया से अगर युद्ध करना है तो उसी तरह युद्ध करना है उसको। उसको समझ के, उसकी भी कमजोरी देखो, माया की क्या कमजोरी है, उसको वहां पकड़ो। सीधा आक्रमण करोगे, इच्छा आ गई, ये चाहिए, अभी उसको कितना भी समझाओ नहीं नहीं नहीं, वो मानती है क्या? उसको चाहिए ही, जब तक उसको नहीं मिल जाएगा शांत नहीं होगी वो, तो उसको थोड़ा पीछे के दरवाजे से अटैक करो, उसके ऊपर भिन्न भिन्न रूप से उसको सोचो, अलग अलग रीति से सोचो। और जो भी इच्छा है क्षणिक है, आई और उसको यही सोचना है, साक्षी होकर देखना है, अगर इच्छा आती है तो आने दो, ठहरी है मन में, देखते रहो, अपने आप विलीन हो जाएगी। इसके लिए बाबा ने कहा है, सेवा इसी के लिए दी हुई है, सेवा में स्वयं को बिजी कर दो तो वो गुम हो जाएगी। उस समय ज्ञान का अध्ययन करना या केवल योग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बार बार आएगी। सेवा में लगा दो स्वयं को, बिजी कर दो स्वयं को, ठीक है। तो आज हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिवस है, जब हमारा बायोग्राफी लिखी जाएगी, जीवन कहानी, जीवनी लिखी जाएगी, तो उसमें एक बात होगी, जो भी लिखेगा इतिहास में क्या लिखा होगा उसमें, इस तारीख को इस आत्मा ने किससे मुलाकात की थी, वो उसमें लिखा जाएगा। जिन जिन की कहानियां लिखी गई है उनके जीवन का वृत्तांत, तो उसमें वो सारी बातें हैं। तो जब हमारी जीवन कहानी लिखी जाएगी तो उसमें क्या होगा आज के दिन के लिए, कि आज भगवान के सामने बैठे थे, भगवान से मिलन मनाया था, वो सर्वश्रेष्ठ सत्ता उसके सम्मुख आज हम होंगे। और ये संकल्प करके ही जाना है कि वो जो भी कहेगा तुरंत वहीं के वहीं धारण करेंगे, वो जो भी कहेगा उसको तुरंत वहीं के वहीं प्रतिज्ञा करेंगे। उसके आते ही ऐसी एक कोई कमजोरी जो लंबे समय से चल रही है उसको दे देंगे, और जो कल संडे की मुरली जो अव्यक्त स्थिति में स्थित है उनको वरदान सहज मिल जाते हैं, तो उससे कोई ना कोई ऐसा एक वरदान ले लेंगे। ऐसी एक कमजोरी जो बहुत लंबे समय से नहीं जा रही है, सारा कुछ करने के बाद ऐसी कोई एक इच्छा जो छिपी हुई है और जो बीच बीच में आती है और फिर विलीन हो जाती है, फिर आती है फिर गायब हो जाती है, ऐसी वो इच्छा को पकड़कर स्वाहा कर देना। ऐसी वो कमजोरी, ऐसी वो इच्छा, ऐसी वो वासना, ऐसी वो कमी, ऐसी वो खामी, अपने अंदर जो भी है सब उसको दे देना, तो वो हमको उससे मुक्त कर देगा। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा चांस है, डायरेक्ट उसके सामने बैठकर उसके वाइब्रेशंस में, भूमंडल पर महाज्योति का अवतरण, सबसे बड़ी सत्ता इस संसार की। आज तक तो गुरुओं की शरण में गए, मनुष्यों के पास से सुना, अभी डायरेक्ट भगवान के वाइब्रेशंस में। केवल लिखते नहीं बैठना है मुरली, कई लोग लिखते रहते, बाबा उधर ड्रिल करा रहे हैं, वो ड्रिल भी लिखते रहे, ड्रिल चालू है उधर, बाबा कह रहे हैं कि अभी ऊंचते ऊंच परम धाम में बैठकर बाप दादा के बाबा के साथ बैठ आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वो भी लिख ही रहे। इधर योग चालू है, वो भी लिख रहे, सब लिख रहे, वो मिलने वाला है तुरंत, लिखने की आवश्यकता नहीं है बहुत ज्यादा, मुख्य मुख्य कुछ है वो लिख लो जो याद रहे। तो जैसे वो वहां बैठकर सारी सभा को साक्षी होकर देखता है, हम अपनी सीट पर बैठकर उसको साक्षी होकर देखे कि वो कैसे देखता है सबको, ये भी एक अच्छा अभ्यास है, उसको देखना कि कैसे वो इंटरेक्ट करता है, कैसे वो बात करता है, कैसे वो देखता है, कैसे वो बोलता है, उसका सब कुछ कैसा है, निराला है वो, है ना, मधुरम, सुना है ना मधुरा गीत जो गोपियां गाती है, अधरम मधुरम, भगवान का कैसा है अधर, उसके होठ मधुर, वदनम मधुरम, उसका मुख मधुर, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, उसके नयन भी मधुर और उसका हसना भी मधुर, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपति रखिलम मधुरम, वो मधुराधिपति है, बाबा ने कहा है बाप है स्वीट का पहाड़, वचनम मधुरम, उसका बोलना भी मधुर, उसके जो वचन है वो मधुर, चरितम मधुरम, उसका चरित्र मधुर है, वसनम मधुरम, उसका जो गमन करना है वो भी मधुर है, वलितम मधुरम, वलित तो हाथ में पहनने का होता है, चलितम मधुरम, वो चलता भी कैसा है मधुर, भ्रमितम मधुरम, उसका जो घूमना फिरना है वो भी मधुर, मधुराधिपति रखिलम मधुरम, मधुर मधुरता से परिपूर्ण है वो, इतना मधुरता से भरा हुआ है, वेनुर मधुरो, उसकी जो मुरली है कैसी है मधुर, रेणुर मधुरा, रेणु अर्थात पुष्प, पुष्प जो है लगाए हुए, आपके लगाए हुए पुष्प भी मधुर है। पानीर मधुरो पादो मधुरा, उसके पद कमल जो है वो भी मधुर है। नृत्यम मधुरम, वो जो नाचता है, नाचते है ना बाबा, वो भी मधुर है। सख्यम मधुरम मधुराधिपति अतिलम मधुरम, गीतम मधुरम पीतम मधुरम भक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम, सब कुछ मधुरम। कारम मधुरम तारम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मरुणम मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम। ये गीत भागवत में है जो गोपिया कृष्ण के लिए गा रही है कि तुम्हारा हे कृष्ण सब कुछ मधुर है। गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम। गोपी मधुरा, गोपी भी मधुर। लीला मधुरा, वो जो लीला करता है वो भी मधुर। युक्तम मधुरम, वो जो युक्ति है उसकी वो भी मधुर। मुक्तम मधुरम, दृष्टिम मधुरम सृष्टिम मधुरम, उसकी जो रची हुई सृष्टि है वो भी मधुर। मधुराधिपति अखिलम मधुरम। गोपा मधुरा, जो गोप है, गोपी तो है ही मधुर, पर जो गोप है वो भी मधुर। गोपा मधुरा। गावो मधुरा, जो गीत गाता है वो भी मधुर। यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम। तो ऐसा स्वीट का पहाड़, स्वीट का सागर जब हमसे मिलने आ रहा है तो उसके सम्मुख हम होंगे तो सारा ही दिन भर जैसे कि हम उसका इंतजार करें, उसका आह्वान करें, सोचे कि हम किससे मिलने वाले हैं, तो स्थिति स्वतः ही अव्यक्त होगी। ओम शांति।